नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हम आज फिर से थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि और भी जानकारियां आ गई हैं, तो विश्लेषण करेंगे पहले फेज का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के और उत्तर भारत के संदर्भ में। और फिर देखेंगे कि फेज टू में क्या होने वाला है। हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी फील्ड में थे, तो अब हम उनसे पूरी जानकारी करेंगे कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ, क्या होने वाला है। आपका स्वागत है बाबा रामदास।
जय हो सर, जय श्री राम।
जय श्री राम। और आप तो फील्ड में थे पूरे समय, तो बताइए ये माहौल इतना ठंडा क्यों रहा है, इतना टर्नआउट कम क्यों रहा? लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को लॉस है।
नहीं नहीं सर, ये एक घिसी पिटी थ्योरी है, और सर वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। चुनाव ठंडा होने का जो भाई सर, गुड़ चाशनी मीठी कैसे होगी, पहले गुड़ पड़ेगा। चुनाव गर्म कैसे होगा जब नीचे आग लगेगी? सर आग लगती है पैसे से। पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसे नाम की चीज ही नहीं है। कैंडिडेट के पास जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे चुनाव लड़े जा रहे हैं। रिजल्ट पहले से डिक्लेयर है, तो फंडिंग होनी भी नहीं है। तो सर चुनाव, मैंने अपने जीवन में इतना ठंडा चुनाव, मतलब आप अगर आपको जैसे कोई विदेशी आ जाए आपके साथ गाड़ी में बैठा हो, तो वो पूरा आज की तारीख में सर आधा हिंदुस्तान घूम जाएगा। बाकी स्टेट्स का तो मैं नहीं जानता हूं, मैंने यूपी में देखा है इन 8 सीट्स पे सर चुनाव प्रचार नाम की चीज ही नहीं थी। नॉट इवन ए सिंगल बैनर पोस्टर, कुछ था ही नहीं। तो कैसे कैसे गरमाएगा चुनाव? अच्छा, पब्लिक से बात करते थे तो पहला वाक्य पब्लिक एक ही बोलती थी, देखो जी जीतना तो ही नहीं है, जीतेगी तो बीजेपी ही। तो सर जब विरोधी पहले ही मान के बैठा है कि उसने जीतना नहीं है, उसका विरोधी जीत रहा है, तो काहे का चुनाव गरमाएगा? तो कैंडिडेट पैसा नहीं खर्च कर रहे सर, बिल्कुल।
चुनाव नहीं गरमाएगा तो फिर टर्नआउट कम हो ही जाएगा, यही बात है।
हाँ, तो सर चुनाव को गरम किया जाता है, चुनाव बस सोशल मीडिया पे जो प्रचार हो सकता है और पब्लिक की जो स्वतः स्फूर्त जो ऊर्जा है उससे जितना बहुत चुनाव गरम हो सकता है। तो सर वो जो ये भी जो लगभग 50-55 या 60% वोटिंग 62% हुई है, ये पब्लिक की स्वतः स्फूर्त ऊर्जा है। और ये सच पूछा जाए तो ये चुनाव पब्लिक लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टियां तो कहीं दिखी नहीं। मैं आपको बताता हूं, आखिरी दिन चुनाव के आखिरी दिन सहारनपुर में योगी जी का एक रोड शो हुआ है और शामली में एक छोटी सी जनसभा हुई है, और बाकी कांग्रेस की, सपा की, बसपा की कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई रैली नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक भी झंडा, बैनर, पोस्टर, प्रचार गाड़ी, कुछ नहीं। मैंने अच्छा कई लोगों से पूछा मैंने कि भैया दारू वारू बट रही है, मतलब पैसा वैसा चल रहा है? बोला जी कुछ नहीं। कोई अच्छा बात है ना कि सर जब सपा वाले या जो विरोधी कैंडिडेट है वो दारू नहीं बांट रहा, वो पैसे नहीं बांट रहा, तो फिर भाजपा वाला क्यों बांटेगा? तो इस चुनाव में सर अगर सच पूछा जाए ना सर, तो ये कि ऑटोमेटिक रिफॉर्म हो गया कि ये शायद भारत का सबसे कम खर्चीला लोकसभा चुनाव होगा, सबसे कम खर्चीला आज तक के इतिहास का।
ये तो बहुत गजब की बात हो गई
सर। मैंने तो पूरा 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई 5 दिनों में। अच्छा, आई स्टार्टेड फ्रॉम जलंधर, मैं और जलंधर की 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हालांकि जलंधर में अभी अच्छा, पर हाँ एक चीज, जिस दिन हम आए हैं उस दिन तक एक भी आम आदमी पार्टी की होर्डिंग सड़क के किनारे जो बिजली के खंभे होते हैं उन पे नहीं थी। और 5 दिन बाद जब हम वापस पहुंचे हैं सर, तो सरहिंद के इलाके में एक भी ऐसा खंभा नहीं था जहां आम आदमी पार्टी की होर्डिंग ना हो। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की होर्डिंग दिखनी शुरू हो गई है, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स और वो, तो वहां चुनाव गर्मा जाएगा, आप देख लीजिएगा 2-4 दिन में। वैसे वहां तो रोज ही गर्म है आजकल चुनाव, आजकल तो वहां पे सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। सबसे सबसे
ज्यादा अभी कौन आ गया, लेटेस्ट कौन आ गया
आज? एक तो संतोष सिंह जी जो न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में सिटिंग सांसद जो थे उनकी डेथ हो गई थी, वो यात्रा के दौरान राहुल जी के साथ चल रहे थे और जलंधर एरिया में उधर उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो उसकी वजह से उपचुनाव हुआ था। तो सुशील रिंकू जिसमें जीता है, तो उनकी पत्नी और उनका बेटा जो है वो आज कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, क्योंकि उनकी सीट से उनको टिकट ना देके चरणजीत सिंह चन्नी को टिकट दे दिया ना कांग्रेस ने जलंधर से।
अच्छा,
तो आज तो संतोष सिंह जी की विधवा पत्नी और उनका बेटा जो है वो दे हैव जॉइंड बीजेपी टुडे। उधर प्रियंका गांधी के सबसे खासम खास सिर पर सलाहकार 35 साल पुराने सहयोगी बिट्टू जी हैं, एक
रवनीत सिंह,
नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, उनका नाम देखिए मैं अभी, सिखों के सारे नाम भी तो एक से होते हैं ना, सर कंफ्यूज हो जाता है। तो वो आज जो है हिमाचल के वो जनरल सेक्रेटरी थे, इंचार्ज थे हिमाचल के, बड़ी महत्वपूर्ण पद था उनके पास, वो आज छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आज ही दिल्ली में ज्वाइन की है।
तो आपके पंजाब में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीजेपी की आंधी चल रही है क्या?
बिल्कुल चल रही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में इस वक्त बीजेपी की आंधी है। मैं आपको बीजेपी का एक इंसिडेंट बताता हूँ, पंजाब का एक इंसिडेंट बताता हूँ, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी की आंधी क्यों नहीं चलेगी। सर एक गैंगस्टर है, वो बाहर बैठता है, वो उसके 12-15-20-25-50-100 गुर्गे हैं पूरे पंजाब में, और वो फिरौती वसूलने और रंगदारी का काम करते हैं। उन्होंने पंजाब के एक शहर में 3 लोगों को फोन करके धमकी दी और 1-1.5 करोड़ रुपया मांगा, और जब उन्होंने सीरियसली नहीं लिया तो तीसरे दिन उनके घर पे फायरिंग की। सुनिए सर बड़ी मजेदार बात, उनके घर पे फायरिंग की, तो पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी की मदद से इधर से उधर से करके 12 लड़कों को उठा लिया। और बकायदा आजकल तो सर बड़ा, पहले तो पुलिस, पुराने जमाने में मैंने सुना है कि किसी को भी उठा के किसी भी आरोप में बंद कर देते थे, पर आजकल तो बहुत चीजें है ना, डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, ये एविडेंस वो एविडेंस देखना पड़ता है। तो 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया सर, पुलिस के पकड़ने के 12 घंटे के अंदर उन्होंने एक अन्य विक्टिम को जिसको की धमकी दी थी उसके घर पे फायरिंग करके पुलिस को बोल दिया कि तुमने हमारे आदमी पकड़े, ये लो। ये कल की घटना है सर, और ये एक शहर में, ये एक
इतने उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं।
हाँ, कि जब पुलिस ने उस गैंग के 12 लोगों को पकड़ा तो उन्होंने पुलिस को चैलेंज करते हुए एक अन्य, जिन लोगों को उन्होंने फोन करके धमकियां दी थी ना, उनमें से एक और के घर फायरिंग कर दी कि ये लो। तो इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ऐसे में अगर पंजाब की जनता योगी को याद करती है कि भैया ये योगी के अलावा इस स्टेट को कोई नहीं संभाल सकता, तो क्या गलत कहती? अच्छा, इनके हैंडलर सब बैठे हुए हैं वहां पे विदेश में, और सुनिए कि अभी जो नंगल में जो विश्व हिंदू परिषद के एक नगर अध्यक्ष की जो बड़ी नृशंस हत्या हुई है, उसके जो 2 पकड़े गए हैं अक्यूज्ड, उसमें वो पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है कि उनके हैंडलर्स पोर्चुगल में बैठे थे और हथियार सप्लाई का और वो सब जो लॉजिस्टिक्स थी वो ISI ने हैंडल किया और उनको वहां पे पैसे दिए गए, और दोनों ही केसेस में पेटीएम के और गूगल पे के माध्यम से उनके खाते में पैसे डाल दिए गए और उनको बोल दिया गया वहां से जाके हथियार ले लो। वहां से उन्होंने हथियार लिए और वो किलिंग की। तो सर ऐसे में भाजपा की आंधी क्यों नहीं चलेगी? सर ऐसे में भाजपा की आंधी चलना तो अभाविक है। दूसरी ये भाजपा की आंधी का कारण बता देता हूं। राजपुरे के पास जो मेन रेलवे लाइन है सर, वो पूरी तरह से अनिश्चितकालीन धरना रेलवे लाइन पे लगा दिया गया है। 50-60 गाड़ियां कैंसिल कर दी गई हैं उस रूट से और 50-60 गाड़ियों को डाइवर्टेड इधर से उधर से किसी तरह चलाया जा रहा है। शंभू बॉर्डर पे धरना लगातार लगा ही हुआ है। तो क्यों नहीं भाजपा की आंधी चलेगी जब आपके प्रदेश में इस कदर लॉलेसनेस है कि 50 लोग मिलके एक नेशनल हाईवे को पिछले 3 महीने से घेर के बैठे हैं और अगले बोलते हैं कि हम से साल भर बैठे रहेंगे।
वो ब्लॉक है अभी भी कि चालू है वो?
हाँ ब्लॉक है सर, शंभू बॉर्डर आज भी ब्लॉक है शंभू।
तो आप सर, किस तरफ से आते?
हम लोग सर वो चंडीगढ़ से जीरकपुर वाला रास्ता खुला हुआ है। जो मेन जो जीटी रोड है मेन हाईवे वो बंद है, पर वाया चंडीगढ़ खुला हुआ है तो हम उस तरफ से गए।
अच्छा, मतलब अगर आपको अंबाला से जाना है लुधियाना की तरफ तो पहले आप चंडीगढ़ जाइए?
नहीं, जीरकपुर जाइए, जीरकपुर से राजपुरा होके फिर आइए।
ओके,
तो इसलिए सर तो अभाविक रूप से अच्छा बीजेपी के लीडर्स को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके उनकी गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं। तो सर पब्लिक गुंडागर्दी देख रही है ना। तो अच्छा पब्लिक बेशक मुंह पे कुछ नहीं कहेगी सर,
लोग ईवीएम लो कहते हैं कि साहब इनको पब्लिक सपोर्ट है?
नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ बकवासबाजी है। सिर्फ इनको बस गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट ने इनकी अराजकता को अलाउ किया हुआ है। पब्लिक सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है, पब्लिक परेशान है इनकी, इनकी गुंडागर्दी से पंजाब की जनता त्रस्त है, परेशान है।
आइए जरा थोड़ा सा फिर से फर्स्ट फेज पे चलते हैं। तो अब आपने लो टर्नआउट का तो आपने विश्लेषण कर दिया, लेकिन पहले ये जो 8 विधान लोकसभा क्षेत्रों में जो आप घूमे हैं जरा उनके बारे में बताएं।
सर पहली विधानसभा लोकसभा नंबर 1 जो है वो है सहारनपुर।
सहारनपुर
में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। सहारनपुर में जब 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है, एक तरफ जैसे 2019 में जो था उस, वो भी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सपा बसपा एक हुई थी परंतु कांग्रेस उसमें नहीं थी, तो इमरान मसूद कांग्रेस से लड़के लगभग 2 लाख वोट काट गया था। परंतु सपा बसपा का वोट मिला के लगभग 5 लाख हो गया था, 5,00,000+। तो भाजपा वो सीट जो है 20 या 22 हजार से हार गई थी। अब वहां की सर इक्वेशन ये है कि 2014 और 2019 का जब आप टोटल करते हैं ना, तो भाजपा का लगभग 5-5.5 लाख वोट है 2014 से लेकर अब तक, जो कि अब 2024 में आगे लगभग 6 लाख हो गया होगा, कुछ वोट बढ़ जाता है ना। तो 5.5-6 लाख वोट भाजपा का है और वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं गया। वो 2014 में भी था, 19 में भी था, 24 में भी है। अब एंटी भाजपा वोट जो है सपा बसपा और सारा कुछ मिला के वो 7 लाख है। अब वो 7 लाख सर दो जगह बटे चाहे 3 जगह बटे, अगर 2 जगह भी बटता है तो भी इमरान मसूद का वोट, जैसे इमरान मसूद ज्यादा वोट ले रहा है, वो माजिद अली जो है वो तीसरे नंबर पे चल रहा है, पर माजिद अली जो है वो बद्दू का कास्ट का कोई मुस्लिम मुसलमानों में एक कास्ट होती है बद्दू, और उसका गांव जो है वो देवबंद के पास पड़ता है, तो देवबंद इलाके का वो है, तो देवबंद का मुस्लिम वोट उस इलाके का और वो बद्दू बिरादरी का वोट जो है वो प्लस बहन जी का जो वोट है, और बहन जी का वहां ठीक ठाक अच्छा वोट है, दलितों की अच्छी आबादी है, तो लगभग 2.5 लाख वोट तो सर ये माजिद अली काट लेगा। तो इमरान मसूद के हिस्से पड़ेगा सर लगभग 4-4.5 लाख वोट, और भाजपा मिनिमम 5.5 पे बैठी है।
लगभग 1 लाख की मार्जिन से जीत जाएगी।
लगभग 1 लाख की मार्जिन से भाजपा, ये राघव लखनपाल जी हैं, वो ये सीट निकाल लेंगे।
चलिए मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। संजीव बालियान को कहा जा रहा था कि बड़ी समस्या में है।
सर कोई समस्या नहीं है, बल्कि बल्कि इस ये जो होक्स, ये जो फर्जी अफवाहें उड़ाई गई थी, इससे संजीव बालियान को उल्टा फायदा हो गया।
वो कैसे?
ठाकुर साहब के नाम पे जो है बिल फाड़ दिया गया, नाराज है नाराज है नाराज है। और सर 2-2 हजार 3-3 हजार की जनसभा, अगर आपके पास फंडिंग हो तो आप 3-4 ठो जनसभा कर दीजिए और थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त कर दीजिए, बाकी मीडिया है ही है उछालने के लिए। तो वो सब चल रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया में बालियान साहब जो है वो जाटों में जाके जो है उन्होंने रोए वो पगड़ी धर दी कि अब तो इज्जत आपके हाथ में है, ये ठाकुर तो हरवा देंगे। तो वो उनको एक सहानुभूति वोट और मिल गया। ठाकुरों का 95% वोट पहले भी मिलना था, अब भी मिला। मेरे दोस्त हैं कर्नल साहब हैं, हैं तो वो जो है वो मुझे कह रहे थे कि नहीं यार नाराज तो हैं ठाकुर। मैंने कहा सर, मैंने कहा अच्छा नाराज तो क्या होगा? बोले नहीं वोट भी नहीं देंगे। मैंने कहा वोट नहीं देंगे, घर बैठे रहेंगे या किसी और को वोट दे देंगे? बोला नहीं किसी और को दे देंगे। मैंने कहा सर ठाकुर हूँ मैं, बाईकास्ट ठाकुर हूँ, मुझे मालूम है अपनी जाति की, और वो भी ठाकुर साहब है। मैंने कहा ठाकुर साहब जब ठाकुर जब बूथ में जाएगा ना तो बड़े जोश से जाएगा, फिर जैसे ही वो ईवीएम के पास पहुंचेगा ना तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे उंगली कांपने लग जाएगी, फिर वो साइकिल की तरफ करते करते फिर अचानक उससे कमल दब जाएगा। तो मैंने कहा ये वोट नाराजगी वराजगी सब फर्जी बातें हैं। और सर वही हुआ सर, रिपोर्ट है कि ठाकरों ने दबा के वोट दिया है और बालियान साहब को दिया है, जाटों का और कंसोलिडेट हो गया उनके पीछे।
अच्छा, और बीएसपी का अलग हो गया।
बालियान साहब तो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। बालियान साहब कैराना में सर यह है कि इकरा के पास है सर 4 लाख वोट, जीतने के लिए चाहिए 5.5-6 लाख वोट। सर इकरा के पास कोई हिंदू टॉपअप नहीं है, सिर्फ मुसलमान के वोट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक भी सीट नहीं जीती जा सकती जब तक कि कोई हिंदू टॉपअप न हो। सर आमतौर पे कैराना में वो हिंदू टॉपअप मिल जाता था गुजरों का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ना कि वहां पे गुजर मुसलमान भी हैं और गुजर हिंदू भी हैं। हुकुम सिंह की फैमिली जो थी वो हिंदू गुजर थी, और ये मुनव्वर हसन की फैमिली है ये मुसलमान गुजर है, और इनका बड़ा भाईचारा है, ये एक ही फैमिली एक ही क्लैन रहा है पुराना। पर सर इस बार हिंदू गुजर बिल्कुल भी इकरा पे जो लगभग 1-1.5 लाख वोट तक चला जाता था उनको जरूरत पड़ने पे, ऐसे मौके भी आए हैं, इस बार वो स्थिति नहीं थी।
तो प्रदीप चौधरी भी तो गुजर है, तो उसको तो
हाँ प्रदीप चौधरी भी गुजर है,
इकरा को वोट क्यों जाएगा?
सर वो उनका पुराना बहुत हर घर में आना जाना है ना, जो टाइज है ना सर वो 30-40 साल पुरानी है, और इकरा जो भी जो है वो 3rd जनरेशन हो गई ना, मुनव्वर हसन फैमिली की 3री जनरेशन हो गई। मुनव्वर हसन के पिताजी भी नेता थे, फिर मुनव्वर हसन उनकी वाइफ तबस्सुम जी, उसके बाद उसका भाई नाहिद हसन, उसके बाद ये इकरा नहीं पढ़ के आई है। तो सर इस इनके जो हैं गुजरों में बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं, आना जाना और बाकी शादी ब्याह नौता अकाली में बहुत पुराने टर्म्स रहे हैं। पर इस अब जो है वो चौधरी साहब जो है उनकी वजह से हिंदू गुजर ने इकरा को वोट नहीं दिया है इसलिए। और लोग बताते हैं कि कैराना तो कभी भी जो है हिंदुओं के लिए कभी भी टफ सीट नहीं रही, कैराना तो हम हमेशा जीतते रहे, 2019 में भी जीते हैं, जबकि 2019 में तो अच्छा इस बार क्या है कि एक तो बसपा का वोट अलग कट गया, सपा बसपा लड़े, और तरफ फिर रालोद का भी तो एक फैक्टर है ना, उस एरिया के जो जाट वोटर हैं, हैं वो भी तो बीजेपी में एड ऑन हो रहे हैं ना।
करेक्ट।
अच्छा
जी,
मैंने बड़े 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 एनालिस्टों को देखा था, वो एनालिसिस कर रहे हैं पर अब भी रालोद को नहीं गिन रहे, वो 2019 को गिन रहे हैं। उन्होंने बोला भैया उस 2019 में से बसपा अलग हो गई, 2019 का जो वोट आया है उसमें से आप पहले बसपा
और रालोद दोनों का वोट शामिल है।
हाँ, तो मिनिमम हर सीट से मिनिमम 1.25-1.5 लाख बसपा घटाइए मिनिमम, और 50,000 रालोद को घटाइए, फिर वो टिकता ही नहीं। अच्छा सर, बीजेपी की एक खासियत है, अभी भी आप जब 2024 के सर फाइनल टैली आएगी ना, तो आप देखिएगा कि 2014 में जो वोट था उससे 10-20-30 हजार बढ़ के मिला है 2019 में, और 2024 में उससे मिनिमम 50,000 से 1 लाख वोट हर सीट पे बढ़ के मिलेगा। तो इस चुनाव का एनालिसिस इसलिए बहुत आसान है कि 2019 का वोट देख लीजिए, 2014 का वोट देख लीजिए, 2014 को एग्जैक्टली यहां आप लाके सामने रख लीजिए, और बीजेपी के वोट में 50,000 से 1 लाख वोट बढ़ा दीजिए, आपको एक भी नॉट इवन सिंगल सीट।
चतुष्कोणीय नगीना का चतुष्कोणीय कॉन्टेस्ट था वहां पे, वो रावण जो है वो बहुत दाड़ रहा था, सुना?
तो रावण अच्छा चुनाव लड़ा बताते हैं, पर इसके अच्छा लोग बता रहे हैं कि रावण और बीजेपी की लड़ाई है फर्स्ट सेकंड के लिए, पर सर मैं इस थ्योरी को बिल्कुल भी बाय नहीं करता। I don't believe this theory कि रावण दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा, ये गलत बात है सर। रावण अभी भी देख लीजिएगा आप चौथे नंबर पे ही रहेगा, बीजेपी वहां आराम से चुनाव जीत जाएगी, रावण को सिर्फ पढ़े लिखे चमारों का वोट मिल रहा है, जाटव वोट अभी भी बहन जी के साथ इंटरेक्ट, बल्कि आज तो मेरे एक मित्र ने कमेंट करके ये बताया है, वो खुद जाटव हैं, बोले सर जाटवों पढ़े लिखे जाटवों का वोट बीजेपी में गया और अच्छा खासा गया है, उसने तो यहां तक कहा जी 50% तक गया है, हालांकि आई डोंट बिलीव कि 50% गया होगा, पर ठीक ठाक वोट जाटवों का बीजेपी को भी मिला है नगीना में। तो
चंद्रशेखर रावण फिर ऐसी बन जाएगी जिसमें
जी बिल्कुल बीजेपी आराम से नगीना निकाल लेगी, बिजनौर में कोई लड़ाई थी ही नहीं।
ओके,
बिजनौर तो इट वाज जस्ट लाइक अ केक वॉक। अब आ जाइए आप रामपुर और मुरादाबाद।
रामपुर
में बिल्कुल सही, रामपुर में वोटिंग बहुत कम हुई है, मतलब इतनी कम हुई है कि कम से कम 10% वोट कम पड़ा है पिछले साल की तुलना में, और ऐसा बताते हैं कि रामपुर में जो आजम खान जी समर्थक वोट जो है वो वोट डालने ही नहीं निकला। अब उसके क्या कारण रहे होंगे वो आजम खान साहब बेहतर जानते हैं या समाजवादी पार्टी बेहतर उसका एनालिसिस करेगी तो बताएगी, हम इतना जानते हैं और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि आजम खान इस बार अखिलेश यादव को सबक सिखाएंगे या जो भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, परंतु अच्छा एक चीज और है सर, हालांकि लोग इन थ्योरीज में जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर हर जगह से मुझे ये खबर मिली कि मुसलमानों में कोई उत्साह नहीं है और मुसलमान वोट डालने कम निकले हैं। मेरी तो यहां तक एनालिसिस है कि ये जो कम वोटिंग हुई है इसमें हिंदुओं का वोट प्रतिशत फिर भी इंटैक्ट है, जो ये कम वोटिंग है ये मुसलमान वोट डालने नहीं निकले हैं इसलिए वोटिंग कम हो रही है, हिंदुओं का उत्साह लगभग बराबर है, 2014 और 19 में जो था लगभग वही मिलेगा आपको हिंदू पार्टिसिपेशन या बीजेपी वोटर का पार्टिसिपेशन। सर ये जो कम वोटिंग है ना ये मुस्लिम वोटर की उदासीनता की वजह से।
हाँ ये तो बात आई थी क्योंकि मैं देख रहा था एनालिसिस जो ये अधिक और ज्यादा कम वोट वाली होती है, जैसे इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ का चुनाव था उसका ध्यान कीजिए आप, छत्तीसगढ़ के चुनाव में पोलिंग जो है वो कम हुई थी पिछली बार से, तो जो कन्वेंशनल जो विजडम है वो ये कहती है कि अगर पोलिंग पहले से कम हुई है तो स्टेटस को होना चाहिए, लेकिन स्टेटस को तो नहीं हुआ, हार गई कांग्रेस और वो भी बहुत बुरी तरह से हार गई। इसी तरह से और भी एग्जांपल लोग देते हैं, जैसे 2012 का चुनाव हुआ था मोदी जी का गुजरात में
जी,
और 10% उनका पोल परसेंटेज बढ़ा था, तो लोगों ने कहा तो ये तो बीजेपी का बढ़ा, हुआ उल्टा, उनका वोट शेयर कम हो गया, सीटें भी कम हो गई। तो ये कोई सेट फॉर्मूला नहीं है,
नहीं तो
कैसी स्थिति होती है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जयपुर में भी देखा, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जयपुर शहर की बात बताऊँ आपको, तो यहाँ तो चर्चा ये है कि भाई जो सामने कांग्रेस का कैंडिडेट था प्रताप सिंह का आचार्य आवास पूर्व मंत्री, वो तो पहले से हार माने बैठा है, उसने खर्चा ही नहीं किया। अगर उसने खर्चा नहीं किया तो फिर वोट किसका कम हुआ, किसका कैंडिडेट, किसका वोटर जो है वो कम निकलेगा, जो खर्चा करेगा उसका या जो खर्चा नहीं करेगा उसका?
तो मैं आपको बताऊं सर, सहारनपुर में हम लोग एक गांव में बैठे थे तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि इस बार पार्टी चुनाव लड़ी नहीं रही, इस बार कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा, वो पैसा नहीं खर्चा कर रहा, उसने तो पर्चा दाखिल कर दिया और उसका अच्छा सर वो आप चाहे कुछ कर लीजिए, वो जो 60% वोटर है ना सर, वोट मैंने कहा कि ये चुनाव की पूरी भी पूरा चुनाव जो है सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है सर, सोशल मीडिया पे सूचना का इतना आदान प्रदान है, हैं तो वहीं से लोग क्या राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, हैं कौन सी पार्टी क्या सोचती है, मैनिफेस्टो क्या है, मैनिफेस्टो पे सर इतनी बहस हुई आप देखिए ना, हैं आपने बीसीओ प्रोग्राम किए होंगे मैनिफेस्टो पे?
नहीं, मैं तो मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट नहीं मानता।
तो अन्य लोगों ने किए होंगे, हमने किए, तो सर पब्लिक पब्लिक सर बहुत वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है, और पब्लिक अपने खुद के उत्साह से वोट देने आई है, उसको लाने की जरूरत नहीं है।
देखिए पर्ची तो आजकल वैसे भी बीएलओ पहुंचा देता है, आजकल पार्टी की जरूरत नहीं होती पर्ची पहुंचाने की।
और तीसरी चीज और सर, लोग बता रहे थे कि स्पेशली नगीना में कि सपा और बसपा के बस्ते भी नहीं लगे कई बूथों पे।
अच्छा,
हाँ कई लोगों ने यह भी बताया कि सपा और बसपा के बस्ते खाली थे और रावण के बस्तों पे काफी भीड़ थी।
तो इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। मुरादाबाद में तो वैसे भी एसटी हसन जी लास्ट तक रो रहे थे, तो उन्होंने तो माहौल खराब किया ही किया है। तो आपका आकलन यह है कि 8 सीटें जो ये उत्तर प्रदेश की वो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है
आराम से सर, कहीं कोई फाइट ही नहीं है
जी,
इट वाज अ वॉक ओवर,
फाइट में ही नहीं आया। चलिए ये भी ठीक है। और अगला प्रश्न पूछने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सुपर चैट पे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले राउंड की ओर, और जो जाटों का जो असली जो इलाका है वो तो अगले राउंड में आएगा, जैसे बुलंदशहर है या मेरठ है, बागपत है और मथुरा है, ये तो बड़े बड़े इलाके हैं जाटों के, अलीगढ़ में भी उनकी पैठ है। तो अगले राउंड में जो सीटें जा रही हैं वो अमरोहा, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये 8 सीटें जा रही हैं। इनका आपका क्या आकलन है, इनमें क्या होने वाला है?
तो इसमें सिर्फ एक सीट है जो कि जिक्र करने लायक है, वो है अमरोहा। तो अमरोहा में सब दानिश अली जी जो हैं वो गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो साहब दानिश अली जी की इक्वेशन ऐसी है सर, मैंने उनके लिए स्पेशली नोट्स बनाए हैं, मैं आमतौर पर नोट्स नाट नहीं बनाता हूँ, अंदाजे से ही तुक्के से ही काम चला लेता हूँ सर। सर 2014
बीएसपी ने भी वहां मुस्लिम कैंडिडेट दे रखा,
हाँ सर 2014 में भाजपा को मिले थे 5.25 लाख वोट, 5.28, और 2019 में मिले हैं 5.37। मतलब दो जो 2014 का वोट था उसमें थोड़ा सा लगभग 9,000 वोट बढ़ाया ही है, उनका वोट इंटैक्ट है। इसके बावजूद जो है वो 2014 में जीते और 2019 में हार गए। क्यों 2019 में इसलिए हार गए? क्योंकि दानिश अली जो है वो सपा बसपा के जो है बसपा से थे और 6,01,000 वोट उनको मिल गया था, क्योंकि सपा बसपा का वोट जो है वो जुड़ गया,
कंबाइंड हो गया,
कंबाइंड हो गया। तो आज जो है वो सपा बसपा सब अलग लड़ रही हैं
और आरएलडी बीजेपी के साथ है,
और आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो अब आप आ जाइए सर, और कंवर सिंह तंवर का सर वही बात है जो मैं, मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो 14 और 19 का वोट था बीजेपी कैंडिडेट का, उसमें 50,000 ऐड कर लीजिए आप मोटे तौर पे। वो तो वैसे ही उसको मैं वो आरएलडी फैक्टर वाला ऐड नहीं करता हूं मैं, ये वैसे ही ग्रोथ,
नॉर्मल ग्रोथ,
नॉर्मल ग्रोथ जो है भाई। 2019 में बाबा एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थे, क्योंकि बाबा की सरकार नहीं थी, पर अब तो बाबा 7 साल पुराने हो चुके हैं और बाबा की तूती बोल रही है सर। मैं अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगा कि सर इस चुनाव में, ये चुनाव मोदी का चुनाव नहीं है यूपी में आज, यूपी में ये चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मैंने किसी को भी मोदी का तो नाम लेते नहीं सुना, पब्लिक बोल रहा था भैया तो बाबा है। तो सर उस
कल तो अमरोहा में प्रधानमंत्री ने भी बड़ी बढ़ा चढ़ा के तारीफ की योगी की।
हाँ सर, पता है क्यों सर? दे गेट द फीडबैक ना। मेरा फीडबैक क्या है कि आप आज चले जाइए, हर आदमी योगी योगी कर रहा है। तो 2014 और 2019 में मोदी मोदी के चेहरे पर चुनाव लोग जीत गए थे, एमपी को तो वो जानता ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार एक अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे हिमाचल के बहुत रिमोट एरिया में चला गया, मतलब जहां अंतिम 10 किलोमीटर तो बाइक बड़ी मुश्किल से गई थी। वहां पहुंच गए, वो किसान था, उसकी झोपड़ी में रात को रुके, तो उससे पूछा, हाँ भाई तेरा एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैंने कहा यार तुम वोट कहाँ देते हो? तो एक अकेला ही घर था उसका, 3 या 4 घर थे वहां। उसने बताया कि यहाँ से 1 घंटा दूर हमारा एक बूथ लगता है, वहां जाते हैं वोट देने। तो मैंने पूछा वोट किसको दिया? तो कहता मोदी को। मैंने कहा तुम्हारे सांसद का नाम क्या है? बोला पता ही नहीं। तो वहां पे मोदी को वोट पड़ा था सर। आज सर मोदी को वोट नहीं पड़ रहा यूपी में, ठीक है, जो मोदी मोदी हैं सर, हम ये नहीं कह रहे, हम उनको कहीं से भी छोटा करके नहीं बता रहे हैं, पर योगी के चेहरे पे, योगी की अचीवमेंट्स पे। और आज आप यूपी के किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या था? मैंने किसानों से बात की, कहते सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर। कहते हम शाम को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, आज हम खेतों में जाते ही नहीं। और कहते 1 मिनट के लिए हम अपनी गाय भैंस छोड़ नहीं सकते थे, चोरी हो जाती थी रात में। कहते आज अब तो
पूरा गैंग चलता था आपके, बहुत तस्करों का,
ट्रक लेके चलते थे, ट्रकों में लाद के ले जाते थे भैंसे, पूरी की पूरी खटाल खाली कर देते थे तबेला। तो सर वो 50,000 वोट बढ़ाता हूं मैं कि जो मोदी की गुड गवर्नेंस की वजह से जो भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है।
योगी
रालोद फैक्टर अलग से है। तो सर उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि सर कंवर सिंह तंवर का आज 6 लाख वोट है अमरोहा में, और दानिश अली और मुजाहिद हुसैन, तो दानिश अली मुश्किल से 1.5 लाख पर टिक जाएंगे आके, थोड़ा बहुत मुसलमान का वोट काट लेंगे तो, और बसपा का जो कोर वोट है वो ले जाएंगे। और सर दानिश अली मैक्सिमम 4.5 लाख। तो अमरोहा बीजेपी 75,000 से 1.5 लाख के बीच में आराम से जीती, 2 भी हो सकता। सिंपल अर्थमेटिक्स,
और बाकी साथ में कोई डिस्कशन नहीं।
और बाकी साथ
तो उधर ना मेरठ में तो
हाँ मेरठ में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मेरठ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक तो अरुण गोविल जी जो है ना, वो बीजेपी ने उनको भावनात्मक राम जी का, राम का कैरेक्टर प्ले किया था ये करके, पर मेरठ वाले उनको बोलते हैं बाहर से पैराशूट कैंडिडेट आ गए ये वो, पर सर ये तमाम आपको मालूम है ये सारी नाराजगियां जो है ना वोटिंग वाले दिन दूर हो जाती है और झाड़ के वोट पड़ेगा। पिछली बार जो है वो वोट जो है वो जो कसाई था बसपा वाला, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनफैक्ट वो चुनाव जीत गया था। लोग बताते हैं कि मेरठ में वो चुनाव जीत गया था, तो वो प्रशासन ने अपनी जोर जबरदस्ती वाला फॉर्मूले अपना के और वो रिपोल करके या करके वा करके उसको धमका के डाले, ज्यादा चिल्लाएगा नहीं क्योंकि उसका पूरा इलीगल स्लॉटर हाउसेस का पूरा नेटवर्क था पूरे इलाके में, और वो बीफ का इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इलीगल पशु चोरी और उसका बहुत बड़ा ठेकेदार था। खैर अब तो उसको एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया गया है बाबा के राज में, लोग बता रहे थे, तो उस जमाने में वो बहुत बड़ा था, तो उसको ये डरा धमका
याकूब कुरैशी,
हाँ ऐसा ही कुछ, हाजी हाजी याकूब कुरैशी,
हाजी याकूब कुरैशी,
तो वो जीत गया था, उसको हरवा दिया गया था और राजेंद्र अग्रवाल जी को 5-4 हजार कुछ वोट से जितवा दिया गया था, ऐसे आरोप है ऐसे।
पर वैसे आजकल के जमाने में संभव है नहीं, जिस जो प्रक्रिया है उसके अनुसार तो
हाँ मैंने भी ये कहा, मैं जो मेरे मित्र मुझे बता रहे थे, मैंने कहा यार आजकल तो ईवीएम का जमाना है ऐसे कहते, तो खैर जो भी है सर, तो इस बार सर वो है। और दूसरे एक वहां मिस्टर देवव्रत त्यागी हैं, वो टिकट ले आए बसपा से, और एक कोई वर्मा जी हैं, उनकी वाइफ सुनीता वर्मा करके हैं, वो सपा से चुनाव लड़ रही, तो एक तो तीनों हिंदू कैंडिडेट हो गए।
ये सुनीता वर्मा जी के लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये शेड्यूल कास्ट है तो ये शेड्यूल कास्ट के वोट ले जाएंगे।
हाँ तो सर मेरठ का चुनाव है तो मजेदार,
लेकिन चूंकि कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है इसलिए हो सकता है कि टर्नआउट यहां भी कम हो जाए।
हाँ तो पर सर फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनली एज बीजेपी की ही रहेगी मेरठ भी,
अगले राउंड में भी आप 8 की 8 सीटें इनको
सर, और बाकी तो फिर गढ़ है ना, चाहे वो फिर अलीगढ़ हो, चाहे बागपत हो, चाहे वो नोएडा हो,
गाजियाबाद,
बुलंदशहर भी बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है।
हाँ वहां तो बहुत लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं लगातार 2 बार से।
हाँ बुलंदशहर में तो हमेशा 4-3 लाख के मार्जिन से हम ये सीट जीते हैं। तो अगली आठ सीट में सिर्फ एक अमरोहा है जो कि थोड़ा सा डिस्कस करने लायक है, बाकी तो भाजपा का गढ़ है।
ओवरऑल क्या देखते हैं आप, ओवरऑल पूरे देश के बारे में क्या विचार है पहले फेज के बारे में, बाद में
सर पूरे देश के बारे में विचार है कि मेरा अब पक्का भरोसा हो गया कि कांग्रेस 30 की फिगर टच नहीं करेगी, कांग्रेस
30 की फिगर नहीं टच करेगी,
30 नहीं आएगी, कांग्रेस 30 नहीं आएगी।
अच्छा,
और मुझे लगता है कि ममता दी भी 20 के आसपास टिक जाएंगी। तो बच कौन गया, डीएमके बच गया, महाराष्ट्र का भी डाइसिस ही काम है इनका, इंडिया अलायंस का, तो इनके पास स्टेट ही एक बच रहा है केरल। तमिलनाडु के बारे में तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही कि मतलब हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा तमिलनाडु में, तो पर तमिलनाडु के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा है ना, क्योंकि सर तमिलनाडु है बहुत दूर और हम वहां पे सुनी सुनाई बात करते हैं है ना, जो लोगों ने बता दिया हम मान लेते हैं, हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं तमिलनाडु के बारे में। कलकत्ता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही है और लोग बता रहे कि नहीं कलकत्ता में बंगाल में जो है बीजेपी इट कुड लैंड समवेयर नियर 30 सीट्स, 30 सीट तक का लोग नाम ले रहे हैं, पर चलो जो भी है बढ़तर
ये तो है कि संभवतः की सीटें जो है वो तृणमूल से अधिक आ जाएंगी।
हाँ, तृणमूल से अधिक आ रही हैं सीटें, क्योंकि मैंने सुना है कि महिलाओं ने बड़ा जोर शोर से जो है हिस्सा लिया है। जो 3 सीटों का जो मतदान हुआ उसमें महिलाएं खूब निकली हैं, और वो संदेश खाली का जो जो संदेश था वो बड़ा उसने असर किया है
जी। तो आइए अब दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं।